जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर निताई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरी हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त और आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता की। तो फ्रेंड्स, आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और जो पॉडकास्ट पे हमें सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, और इस प्रक्रिया में हमारा सरल भगवद गीता का कोर्स भी हमारा हम कर चुके हैं, है ना, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे हमारी ऐसी तीर्थ यात्रा हमारी आरम्भ हो चुकी है। और सबसे पहले फ्रेंड्स, हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्णा का आह्वान करते हैं कि भगवान श्री कृष्णा हमारी बुद्धि में आए, अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं, ताकि हम सब उनकी वाणी को, उनकी इंस्ट्रक्शंस को, उनके गीत को ठीक से समझ सकें, और सबसे बड़ी बात है अपने जीवन में अपना सकें। तो जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर 1 शोकग्रस्त अर्जुन हम स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ वर्सेस हम कर चुके हैं, है ना। तो लास्ट 4 वर्सेस किए थे हमने, उनको मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ। वो भी मैं व्हाट्सएप पे भेजे हुए हैं, है ना। 25, 28, 29 और 30, ये 4 श्लोक हमने किए थे, इसको मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ। देखो, श्लोक नंबर 21 में अर्जुन ने कहा था भगवान श्री कृष्ण को कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, है ना। जब युद्ध आरंभ होने वाला था, तो जैसे वो युद्ध करने आए पांडव वगैरह और कौरव वगैरह, है ना, तो दोनों आमने सामने सेनाएं खड़ी थी। तो अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण को कि मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, क्योंकि वो देखना चाहता था कि मैं किन के अगेंस्ट युद्ध लड़ने वाला हूँ, है ना, वो नजदीक से देखना चाहता था। तो 25th वर्ष में भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो रथ था, कृष्ण और अर्जुन वाला रथ, है ना, वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी के आगे खड़ा कर दिया, इंटेंशनली खड़ा किया उन्होंने, जो मेन लोग थे, है ना, युद्ध में जो अर्जुन का जिनके साथ भावनात्मक लगाव था, अटैचमेंट थी अर्जुन की उनके साथ, भीष्म पितामह जी के साथ, मतलब उसके दादाजी थे, है ना, और द्रोणाचार्य जी जो उनके गुरु जी थे, है ना, उनके आगे भगवान श्री कृष्ण ने रथ आगे खड़ा कर दिया। उन्होंने सोच समझ कर अपना रथ उनके आगे खड़ा किया। क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि अर्जुन कंफ्यूज होगा इनको देख के, है ना, क्योंकि उनके साथ उसकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। तो अर्जुन कंफ्यूज होगा, तभी तो श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य होगा, है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म और द्रोणाचार्य जी के आगे रथ खड़ा कर दिया, है ना, क्योंकि अर्जुन का भीष्म पितामह जी से विशेष स्नेह था, है ना। और वर्ल्डली लाइफ में भी हम अगर देखें, तो हम भी मोहों के आगे, जहाँ पे हमारी एक्सेसिव अटैचमेंट्स होती हैं, उन लोगों के आगे हम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, है ना। जितनी ज्यादा हमारी अटैचमेंट्स होती है, उतने ज्यादा हम भ्रमित हो जाते हैं और हम कमजोर हो जाते हैं, राइट डिसीजन नहीं ले पाते। और द्रोणाचार्य जी उनके गुरु थे, है ना, शस्त्र विद्या सीखी थी अर्जुन ने द्रोणाचार्य जी से, है ना। देखो, अगर हम भक्ति में की तरफ बढ़ते हैं ना, स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हम आगे आते हैं, क्योंकि बचपन से तो हमने चीजें सीखी नहीं है जो भगवद गीता में सिखाई जा रही हैं बातें, है ना, अभी हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड सर्कल में जो इस रास्ते में नहीं चले हुए हैं, है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा हमें टोंट भी मारते हैं कि बड़ी भक्ति हो रही है आजकल, है ना, या फिर थोड़ी थोड़ी भक्ति करनी चाहिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि जो इस रास्ते में नहीं चले हैं वो इस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे ना कभी भी, है ना। ये जो भक्ति का रास्ता है, ये जो सच्चे धर्म का रास्ता है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का जो रास्ता है फ्रेंड्स, ये वही लोग समझ पाएंगे जो इस रास्ते में चले हैं, जिन्होंने समझ लिया है, ना, आप जिनकी थर्ड रीडिंग है या फर्स्ट रीडिंग में 6-7 महीने हो गए हैं उनको, है ना, तो वो जब उनके जीवन में बदलाव आते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव आते हैं जीवन में, है ना, तो अपने आप ही चीजें समझ आनी शुरू हो जाती है, लाइफ में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है ना, तो हमें समझ आता है, नहीं यार, जो पहले वाली लाइफ है और अब की लाइफ में बहुत सारा डिफरेंस है ना। मेरी लाइफ बेटर हो रही है, मैं कर क्या रही हूँ, थोड़ा सा भगवान का नाम ही ले रही हूँ, मेरी लाइफ बेटर हो रही है। जो मैं फ्यूचर और पास्ट में रहती थी, ओवर थिंकिंग के ट्रैप में रहती थी, मेरे मन में ये सारी चीजें नहीं आती है। मैं प्रेजेंट में फोकस करती हूँ कि मेरे को आज का दिन कैसे बेटर करना है ना। तो ये सारी चीजें डे बाय डे आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है ना। तो वो जो टोंट मिल रहे होते हैं हमें, जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, धीरे धीरे वो फर्क पड़ने बंद हो जाता है। शुरू शुरू में तो पड़ता है ये सब चीजें फर्क, है ना। जैसे कोई बच्चा अगर भक्ति कर रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कई बार पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट नहीं करते, या कई बार पेरेंट्स भक्ति करते हैं तो बच्चे टोंट मारते हैं कि कोई और काम नहीं है आपको, है ना। तो मतलब आसपास के लोग ही हमें क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, है ना। और कई बार हस्बैंड वाइफ में भक्ति को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, है ना। और कई बार तो ऐसा होता है कि भक्ति का जो नया नया पौधा लगा होता है, मटेरियल रिलेशनशिप्स के साथ जो व्यक्ति ज्यादा अटैच्ड होता है, जो अपने मोहों के में ज्यादा अटैच्ड होता है, अपने आसपास के वातावरण को हैंडल नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, फिर भक्ति को ही डेडिकेट कर देता है, है ना। तो जो ये मोह होता है ना, ये भक्ति के रास्ते में बहुत ऑब्स्टेकल होता है, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का एक ऑब्स्टेकल है, एक्सेसिव अटैचमेंट, है ना। तब हम उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि हम अभी हम चले होते हैं रास्ते में नए नए, है ना। हाँ, हम चल लेते हैं एक साल दो साल, फिर तो हम समझ जाते हैं चीजों को और हमें हैंडल करने भी आ जाता है। लेकिन नए नए जब हम चलते हैं, है ना, तो हमें टोंट वगैरह मिलते हैं या हमें क्रिटिसाइज किया जाता है, तो हम ये रास्ता भी छोड़ने में परहेज नहीं करते, क्योंकि हमें इतने एक्सपीरियंसेस नहीं हुए होते, है ना। हमें लगता है कि क्या यार छोड़ो, इतना कुछ सुनने को मिल रहा है, छोड़ दो उसको। तो भगवान श्री कृष्ण देखो भगवान है वो, तो उनको तो सब पता है ना, बहुत इंटेलिजेंट है वो, तो इसलिए उन्होंने जो अपना रथ है वो उन दोनों के आगे खड़ा कर दिया, है ना। क्योंकि अगर वो रथ दुर्योधन के आगे खड़ा करते तो कन्फ्यूजन्स नहीं होती, है ना। किसी और के आगे खड़ा कर देते तब भी कन्फ्यूजन्स नहीं होती, है ना। क्योंकि अर्जुन के हृदय में, अर्जुन के मन में इन दोनों के प्रति गहरा प्रेम है, और उन दोनों के हृदय में भी अर्जुन के लिए प्रेम है। इसलिए भगवान ने रथ भीष्म और द्रोणाचार्य जी के आगे खड़ा कर दिया, है ना। क्योंकि भगवान तो भगवान ही है ना। अब उनको पता है कि अब अर्जुन कंफ्यूज होगा उनको देख के, है ना। तो उनको पता है कि क्या चीज होनी चाहिए कि व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड इस तरह से हो जाएगा कि भगवत गीता उसको सुनाई जानी चाहिए। एक माहौल क्रिएट करना था ना, है ना। और पहला जो चैप्टर है वो सेटिंग ऑफ द सीन है कि कैसे अर्जुन कंफ्यूज होगा, है ना, और कैसे भगवत गीता उसको कही जाएगी, है ना। वो सेटिंग हो रही है, पूरे फर्स्ट चैप्टर में क्रिएट हो रहे हैं सीन, है ना, कि कैसे अब भगवत गीता अर्जुन को सुनाई जाएगी। ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे, है ना, भगवान क्रिएट करेंगे कि ये भगवत गीता को आना था, है ना, अर्जुन के माध्यम से हमें सुनना था। तो हमें भी ये याद रखना है कि हम भी कहीं कमजोर पड़कर अपना फोकस ना खो पाएं अपने स्पिरिचुअल लाइफ से, है ना, भक्ति से, जो रियल मीनिंग हम समझ रहे हैं। तो हमें भी मतलब हर चीज को कनेक्ट करना है ना, कोई भी श्लोक है उसको कनेक्ट करना है, अर्जुन की जो हर सिचुएशन है ना उसको अपने से कनेक्ट करना है कि अर्जुन अब मोह में पड़ गया है तो हम भी पढ़ते हैं, है ना। तो भगवान हर सिचुएशन हमें दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे हम लोग अटकते हैं अर्जुन के जैसे, है ना। फिर आ गया 28th वर्ष। इस वर्ष में भी अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि इस युद्ध में उनके स्वजनों यानी कि उनके जो कुटुंबी है ना, उनके पितामह, उनके गुरु, उनके रिश्तेदारों के लिए अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि ये सब अर्जुन कह रहे हैं मेरे प्रियजन है, उनके परिवार के सदस्य है। 28th श्लोक में, 28वें श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति को व्यक्त किया गया है, है ना। ये श्लोक अर्जुन की मनोभावनाओं को दर्शाता है, उसके अंतर्मन की दुविधा को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मेरे जो अपने परिजन है उनकी मृत्यु की चिंता उनको हो रही है, और उनकी मृत्यु की चिंता से उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका मनोबल, उनका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। मतलब अर्जुन मोह में आ गए अपने रिलेटिव्स को देखकर, अपने कुटुंबियों को देख के मोह में आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अर्जुन को राज्य का या सत्ता का कोई मोह नहीं है, उसको नहीं चाहिए कि मुझे विजय मिल जाए, मुझे राज्य मिल जाए, है ना। तो आपने देखा आजकल भाई भाई कैसे एक दूसरे को नीचा गिराने में प्रॉपर्टीज के लिए कैसे लड़ते हैं एक दूसरे से, है ना। हर भाई चाहता है कि मेरे को ये सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, है ना। लेकिन अर्जुन को राज्य का कोई मोह नहीं है, उसका मन ही नहीं कर रहा कि मैं युद्ध लड़ूं। फिर 29th वर्ष में देखो दुर्योधन और अर्जुन के भाव में डिफरेंस है सिर्फ, है ना। बोलते हैं ना अपने इंटेंशन प्योर रखो, तो बस हमने हर श्लोक से हमने कुछ ना कुछ सीखना है। दुर्योधन का भाव क्या है, उसका भाव है सिर्फ खुद से और अपनी तरफ के लोगों से, कि किसी भी प्रकार वो जीत हासिल कर ले और उनको वो एक घास की तिनके जैसा प्रॉपर्टी ना दे सके, है ना। पूरे युद्ध में दुर्योधन का यही भाव रहा कि मुझे पांडवों को कुछ नहीं देना है। और दूसरी तरफ अर्जुन का भाव देखो, देखो ये युद्ध की तैयारी तो बचपन से चल रही थी उनकी, है ना। अर्जुन बहुत टाइम पहले से तैयारी कर रहे थे, उनको पता था या तो जीत होगी या तो हार होगी, है ना, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वो युद्ध के लिए तो खड़े हो गए, लेकिन अपने स्वजनों को देखकर जिनके साथ उनकी एक्सेसिव अटैचमेंट थी, है ना, भाव थे, उनको देखकर उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इस कारण उनके हाथ से धनुष गिर जाता है ना। फिर नेक्स्ट 30th वर्ष में देखो अर्जुन के मन में युद्ध के बारे में सोच करना टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। और जब हमारे अंदर दुख होता है ना, तो उसकी जो रिजल्ट है ना वो हमारी फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है। तो ऐसे ही उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसके शरीर पे जो असर पड़ रहा है अर्जुन के शरीर पर, उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर के सारे अंग तिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है और सारे शरीर में मेरे जलन हो रही है। मतलब भावार्थ ये है कि अर्जुन भ्रमित हो रहे हैं, है ना, मोह में आ रहे हैं। जो वो कह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, इसलिए वो युद्ध भूमि में भी खड़ा होने में असमर्थ हो रहे हैं, है ना। उनको क्या लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा। तो अर्जुन को चिंता होने लगी है अब उन सबको देख कर कि मैं उनके साथ युद्ध कैसे लड़ूंगा, ये तो मेरे सब अपने हैं, मेरे सारे स्वजन है, है ना। तो डिप्रेस हो रहे हैं अर्जुन, इसलिए उनको चिंता हो रही है। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लेते हैं। ममता जी पढ़ लो 31st, है ना, 31वां श्लोक पढ़ना है हमने, श्लोक नंबर 31। हरी बोल।
हरी हरी बोल। अध्याय 1, शोकाग्रस्त अर्जुन, श्लोक नंबर 31। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। इस श्लोक में भी फ्रेंड्स अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बात कर रहे हैं। आप श्लोक खोल सकते हो ना, इससे समझना आसानी होती है। फिर देखो पांडवों को तो बचपन से ही इस बात का पता था कि कभी ना कभी तो युद्ध होगा ही, है ना, कुछ नई बात तो थी नहीं। बहुत सालों से तैयारियां चल रही थी युद्ध की। अर्जुन के लिए कोई नई बात थोड़ी थी कि उसको अपने रिश्तेदारों से लड़ना है, अपने कुटुंबियों से, अपने रिलेटिव से लड़ना है, कौरवों से लड़ना है, है ना। उसको पहले से ही पता था कि इन लोगों के साथ युद्ध करके उसे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, है ना। बट प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि अब वो जब भगवान श्री कृष्ण अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाते हैं तो अर्जुन क्यों फिर मोह में आ गया, किस सोच में पड़ गया। तो इसका आंसर यही है फ्रेंड, कि जब कोई इंसान माया में भ्रमित हो जाता है, मोह में आ जाता है, तो उसको सारी बातें भूल जाती हैं, उसको समझ आने बंद हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसको समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि एक नॉर्मल दुनियादारी में फंसा एक व्यक्ति फ्रेंड कभी नहीं सोचता कि मेरे इस एक्शन से भगवान खुश होंगे या नहीं होंगे। अर्जुन अब फर्स्ट चैप्टर में अभी इसी सोच में है, क्योंकि वह सिर्फ अभी अपना और अपने रिश्तेदारों के बारे में सोच रहे हैं, है ना। अर्जुन ने भी नहीं ये सोचा कि भगवान श्री कृष्ण मुझसे क्या चाहते होंगे। तो चैप्टर 1 रिप्रेजेंट करता है जब हम भक्ति में नहीं होते, अपनी दुनिया में खोए होते हैं, जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि मैं खुश हो जाऊं, मेरी वो चार लोगों की वो जो फैमिली है बस वो खुश हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मेरा हस्बैंड खुश हो जाए, मेरे बच्चे खुश हो जाए, बस। हम कभी नहीं चाहते कि हमारी फैमिली हमसे दुखी हो जाए, है ना, क्योंकि जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हम सिर्फ इसी बात पे हम अटके होते हैं कि बस हमें सुख मिल जाए, बस मैं खुश हो जाऊं, मेरे परिवार खुश हो जाए। उसके लिए हम कई चीजें गलत भी करते रहते हैं, हम सही का साथ कभी नहीं देते फ्रेंड। अगर हमारे फैमिली मेंबर्स में से कोई व्यक्ति गलत हमें सलाह देता है या गलत रास्ते में भी लेके जाता है तो हम उसको मना नहीं कर पाते, मोह के आगे हम विवश हो जाते हैं, है ना। हम भी धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो जाते हैं फ्रेंड्स, आंखें होते हुए भी हम अंधे हो जाते हैं। कई बार दुनियादारी के जीवन में फ्रेंड्स हम ऐसे दोहराए पर खड़े हो जाते हैं जहां पर एक तरफ कुआं होता है और एक तरफ खाई होती है। चाहते तो हम सुखी हैं बट लाइफ में हम कुछ ऐसे डिसीजन हम ले लेते हैं कि फिर हम दुखी हो जाते हैं मोह के चक्कर में पड़ के, तो इसलिए फिर वो उस व्यक्ति को, हम लोगों को दुखी मिलते हैं फिर, गलत चीजें करेंगे तो दुखी मिलेगा ना फिर, है ना। तो अर्जुन को भी यही लग रहा है कि वो युद्ध कर भी लेगा तब भी तो उसको सुख नहीं मिलेगा, अगर हार जाएगा तब भी उसको सुख नहीं मिलेगा, अगर जीत जाएगा तब भी उसको सुख नहीं मिलेगा, है ना। तो उसकी सिचुएशंस को गहराई से देखो, क्योंकि उसे अपने दादाजी को मारना है, गुरुजी को मारना है, अपने कजन्स को मारना है, है ना। और आप खुद सोच कर देखिए कि आपको या मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर हमें कुछ बात भी करनी पड़ जाए, कुछ जोर से भी बोलना पड़ जाए, तो क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हमें मारना नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा हिट भी करना हो ना तो हम कर नहीं पाएंगे, है ना। अर्जुन को तो थोड़ी बहुत डिबेट नहीं करनी है, बल्कि उसको तो फिजिकली मारना है उनको, जिनको वो बहुत प्यार करता है ना। तो उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, तभी हमें भगवद गीता समझ आने वाली है फ्रेंड्स। सोचो कि उसकी जगह अगर मैं होती तो मैं क्या करती है। अर्जुन सोचता है कि अगर वो युद्ध करेगा तो भी दुख है, और अगर वो युद्ध नहीं करेगा तब भी दुखी है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको करना क्या है ना, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि कौरवों को, अपने कुटुंबियों को मारकर उसको जीवन में सुख नहीं मिल सकता, इसलिए वो लड़ने को तैयार नहीं है ना। इसके लिए तो उसने वन में जाने का भी निर्णय कर लिया, उसने अपने सारे हथियार छोड़ दिए थे। वैसे तो वो राजा था, लेकिन राजा होने के नाते उसको राज्य चाहिए था, लेकिन अर्जुन के पास तो राज्य था ही नहीं, है ना। तो उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का यही एक अवसर है कि अपने रिश्तेदारों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, लेकिन वो मोह में आ गया हुआ है अपने रिलेटिव्स को देखकर, वो युद्ध ही नहीं करना चाह रहा है ना। तो हम लोग भी देखो चाहते तो सुखी हैं, लेकिन हम लोग सब भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली हम लोग भगवान के सेवक हैं, दास हैं उनके, और हमारा काम है भगवान को खुश करने वाले कार्य करना, ना कि भगवान हमें खुश करने वाले कार्य करें, है ना। जब हम लिस्ट लेकर जाते हैं कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मैंने देखो आपके आगे मंत्र जाप कर रही हूं, मैं किताबें पढ़ रही हूं, तो आपका काम है मुझे खुश करना, लेकिन भगवान का काम नहीं है हमें खुश करना फ्रेंड्स। हमारा काम है अपने कर्मों के द्वारा भगवान को खुश करने वाले कार्य करना, लेकिन ऐसी सोच तो हमारी होती नहीं। हम तो बस भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, और इस भागम भाग में हम लोग गलत कार्य भी करते रहते हैं। भक्ति करते हैं दो टाइम की, फिर सारा टाइम अपना मनगढ़ंत जीवन जीते हैं, है ना। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, है ना, भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, अच्छे ग्रंथ पढ़ते हैं, अपने गुड बुक्स पढ़ते हैं, तो हमें समझ आती है कि हमें करना क्या है ना। संसारिक जीवन में तो फ्रेंड देखो हम यही पे फंसे होते हैं कि बस मैं खुश हो जाऊं, मेरा परिवार खुश हो जाए, लेकिन लाइफ आपको ऐसी सिचुएशंस में फंसाती है जहां पर हमें दोनों तरफ से दुख दिखेंगे, इसीलिए फिर एक इंसान सोच सोच कर डिप्रेशन में चला जाता है ना। जैसे अर्जुन को अपने रिलेटिव्स को मारना है, लेकिन हम लोग अर्जुन वाली सिचुएशन में है नहीं है, लेकिन मारना मतलब किसी को नाराज करना पड़ सकता है हमें। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि अपने ही लोगों को मारकर उनसे लड़ाई करके उसको कैसे खुशी मिलेगी, उसको क्या फायदा होगा। और फ्रेंड देखो जब भी भगवद गीता में मारने की बात करेंगे, पांडवों और कौरवों के युद्ध की बात करेंगे, तो हमें ये सोचना है कि अर्जुन को तो मारना है, लेकिन हमें उसको नाराजगी से लिंक करना है, जो अपनी लाइफ में छोटी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है उनके साथ लिंक करना है ना। जब भी हमें कोई डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में, तो हमें क्या होता है कि नहीं नहीं यार कोई रियलिटी हमसे नाराज ना हो जाए, है ना। और अर्जुन को क्या लग रहा है कि मैं कैसे इनको मार पाऊंगा, है ना। इसी चक्कर में हम कई बार ऐसे कोई डिसीजन नहीं ले पाते जो कि हमें लेने चाहिए, हमें क्या लगता है कि कोई नाराज ना हो जाए, इसलिए कई बार हम लोग सच का साथ नहीं दे पाते, मोह में फंस के। वर्ल्डली सोच क्या होती है फ्रेंड्स, मेरा क्या फायदा होगा। और यहाँ युद्ध क्यों हो रहा है, धर्म को बचाने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए युद्ध हो रहा है। ये नॉर्मल कोई युद्ध थोड़ी था, महान युद्ध था ये, धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए युद्ध हुआ था ये, है ना। कभी भी जो युद्ध होते हैं फ्रेंड्स इतने लार्ज स्केल के, वो पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होते थे पहले, है ना। तो सेम हमारी जो जिंदगी चल रही है वो एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, जिसमें भगवान हमारा टेस्ट लेते रहते हैं, है ना, कि क्या हम अपनी जिंदगी में समाज कल्याण में आगे बढ़ते हैं, क्या हम जो डिसीजन लेते हैं लाइफ में तो क्या हम सबके बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं कि मेरा क्या फायदा है। क्या हम डिसीजन लेते वक्त सबके बारे में सोचते हैं, या हम सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है। लेकिन अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन अपने रिलेटिव्स के बारे में सोच रहा है, वो मोह में फंस चुका है ना। अभी वो सबके हित के बारे में नहीं सोच रहा है, समाज कल्याण के बारे में नहीं सोच रहा है, कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान श्री कृष्णा क्या चाहते हैं, वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो सिर्फ अभी अपने बारे में सोच रहा है ना। वर्ल्डली लाइफ में हम क्या सोचते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों को खुश करके अपने कैरियर में ग्रो करके खुशी को पालेंगे, है ना। इसलिए हम ग्रो करना चाहते हैं ताकि हम रिश्तेदारों को दिखा सके, गाड़ी लेंगे ताकि हम रिश्तेदारों को दिखा सके, घर लेंगे ताकि हम रिश्तेदारों को दिखा सके। लेकिन कई बार इसका रिजल्ट हमें उल्टा मिलता है ना। हमें क्या लगता है कि चीजों से हमें खुशी मिलेगी, मैं घर ले लूंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, मैं गाड़ी ले लूंगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन वो खुशी फ्रेंड्स आप देखना, आप ऑब्जर्व करो कि वो खुशी कितने दिन की होती है। गाड़ी मिल जाती है, घर मिल जाती है, तो क्या हम खुश रहते हैं, परमानेंट खुश हो जाते हैं? जो खुशी होती है ना फ्रेंड्स, वो हमारे अंदर होती है और सिर्फ भगवान से कनेक्शन से मिलती है, अच्छे कर्मों से मिलती है। जब अपने लाइफ में अच्छी चीजें हमारी लाइफ में आती हैं, जैसे भगवद गीता हमारी लाइफ में आई, या जो हम अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, है ना, तो हमें समझ आती है कि एक्चुअली खुशी है क्या और मैं कहाँ भाग रही हूँ इस खुशी के लिए। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है खुशी पाने के लिए। खुशी तो मेरी अंदर ही है, मैं जो भाग रही हूँ बाहर, लोगों में ढूंढ रही हूँ इसकी खुशी, चीजों में ढूंढ रही हूँ इसकी खुशी, कि मेरे हस्बैंड खुश हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे को ये चीज मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे को गाड़ी मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मेरे को ये मिल जाएगा, मेरे को वो मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। और फ्रेंड्स कभी भी खुश नहीं हुए हम, है ना। तो हमें करना क्या है, हमें अपने रिलेशनशिप्स और अपने कैरियर से रिलेटेड ड्यूटीज, सोसाइटी से रिलेटेड ड्यूटीज को फ्रेंड डिवोशनली करना है, भगवान से जुड़े रहकर करना है ना, कि भगवान ने मुझे ये कर्म करने के लिए भेजा है तो मुझे सारे कर्म, चाहे अपने घर की ड्यूटीज हो, चाहे अपनी ऑफिस से रिलेटेड ड्यूटीज हो, चाहे अपनी सोसाइटी से रिलेटेड ड्यूटीज हो, मुझे इसको बेस्ट वे में करना है ना। और ये नहीं सोचना है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ तो मुझे हर वक्त एप्रिसिएशन ही मिलेगी। चुपचाप बस जो सुना है बस उसको करते रहेंगे। तो देखो, जब भगवान से ही हमें एप्रिसिएशन मिल गई, अंदर से हमें कॉन्फिडेंस भर भर के आएगा कि हमें किसी और के अप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। फ्रेंड्स अंदर से खुश रहते हैं क्योंकि कुछ गलत करना नहीं है तो कुछ गलत होगा ही नहीं फिर ना। जो भी सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, डिफिकल्टीज तो आएंगी, लेकिन उसको हम बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरह से हम उसको हैंडल कर लेते हैं फिर। लेकिन जब हम सोचेंगे कि हम रिश्तों से खुशी अचीव कर लेंगे, है ना, पैसे से खुशी अचीव कर लेंगे, तो उसी को फ्रेंड्स फिर माया कहते हैं, उसी को मोह कहते हैं फिर। जैसे अर्जुन अभी अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोच रहा है ना। जो जितना अपनी हैप्पीनेस और जितना अपनी कंफर्ट के बारे में सोचता है ना, उतना ही डिसकंफर्ट मिलता है उसको लाइफ में, है ना। और जो जितना दूसरों के बारे में, सबके हितों के बारे में, सबके कंफर्ट के बारे में, भगवान की सेवा वाले भाव में जीवन जीतता है ना, उसको उतना ही कम्फर्ट और हैप्पीनेस मिलती है, और वह धीरे धीरे वो भगवान की तरफ आगे बढ़ता जाता है। देखो फ्रेंड्स, हमने बार बार बात की कि अर्जुन मोहग्रस्त है, उसको अटैचमेंट से अपने रिश्तेदारों से, है ना, अपने कुटुंबियों से। देखो फ्रेंड्स, ये देखना बहुत आसान है, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट बात है ना, सबसे डीप जो बात है ना, कि अर्जुन को सत्ता का, राज्य का, विजय का कोई मोह नहीं है, कोई लालच नहीं। आप इस बात को ऑब्जर्व करो। अर्जुन को तो कितना आसान था युद्ध लड़ना, और उसको पता था जीत भी उसकी होगी, ये थोड़ी उसको पता नहीं था, उसको तो पता था जीत तो मेरी होगी। लेकिन अर्जुन को मोह किसका हो गया, अपने स्वजनों के मरने का, उनकी प्राण रक्षा का मोह हो गया कि इनके बिना मैं कैसे जीऊंगा, है ना। और आपको पता है, इतिहास गवाह है कि राज्य का, पैसे का, धन का ऐसा नशा होता है कि लोग अपने स्वजनों की हत्या करने में भी संकोच नहीं करते, है ना। कुर्सी के लिए एक भाई अपने भाई को, बेटा अपने बाप को मार देता है, है ना। और यहाँ पे तो अर्जुन के पास वैलिड रीजन है दुर्योधन के साथ, कौरवों के साथ युद्ध करने का, लेकिन फिर भी अर्जुन बदला लेने के बारे में नहीं सोच रहे, राज्य के बारे में नहीं सोच, इससे ज्यादा वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपने स्वजनों को, अपने रिलेटिव्स को। कौन सोचता है ऐसे, है ना, जिसको इतना राज्य मिल रहा हो, इतनी कुर्सी मिल रही हो, सत्ता मिल रही हो, विजय मिल रही हो, तो कौन सोचेगा, कौन नहीं लेना चाहेगा, मुझे ये बताओ। तो ये बात अर्जुन की, देखो कोई मोह नहीं है उसको राज्य का, अर्जुन को सिर्फ अपने कुटुंबियों के लिए, अपने स्वजनों के लिए उनके अंदर मोह है, ये तो दिख रहा है। लेकिन राज्य के प्रति, विजय के प्रति, धन के प्रति डिटैचमेंट, अनासक्ति, वो भी देखो, हर एक चीज ऑब्जर्व करो ना, वही तो अर्जुन को पात्र बनाती है भगवद गीता सुनने का। ऐसे क्यों नहीं सुना दी पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता, ऑब्जर्व कर रहे थे ना वो बचपन से उसको, कि कोई उसकी नेचर को, उसके भावों को, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे थे, है ना। तो इसलिए तो मैं कहती हूँ कि हम लोगों को भी भगवान ने चुना है भगवद गीता सुनने के लिए। ऐसे नहीं मिल जाती फ्रेंड्स भगवद गीता सुनने को, अगर सुनने को मिल भी जाएगी तो फिर ये वही भगवद गीता सुनोगे आप, जो कई लोग आपने देखे होंगे आसपास बोलते हुए कि हाँ मैंने भी पढ़ी है, दो बार, तीन बार, लेकिन आपको लगता है कि उन्होंने उनके जीवन में ऐसी कोई महक होती होगी या उनके जीवन में ऐसी कुछ चेंजेस होती होंगी? तो हमें वैसी भगवद गीता नहीं पढ़नी, ध्यान से हर एक वर्ड अंदर जाना चाहिए, एक एक श्लोक अंदर जाना चाहिए। ठीक है, सारी बातें नहीं भी समझ आएंगी, लेकिन एक दो बातें भी अगर हमें समझ आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो सकता है ना। क्योंकि ज्यादातर लोगों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो पाठ करते हैं, कुछ नहीं मिलेगा अगर हम पाठ करते रहेंगे, भगवद गीता के श्लोक पढ़ते रहेंगे या रामायण पढ़ लेंगे। आपने सुना होगा लोगों को, मैंने पढ़ी है, 3 बार पढ़ी है, 4 बार पढ़ी है, कुछ भी बदलाव नहीं आता। लेकिन उनके जीवन में अगर आपके आसपास के लोग हों तो कोई चमक नहीं, कोई निर्मलता नहीं आती उनके जीवन में, है ना। लेकिन अगर कोई चमक ही नहीं आई, कोई मन ही निर्मल नहीं हुआ हमारा भगवद गीता पढ़ के, तो क्या ही फायदा फिर भगवद गीता पढ़ने का। अर्जुन में तो वो दिव्य गुण थे ना, दिव्य गुण है ना ये, कि उसको सत्ता का लालच नहीं है, राज्य का लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, उसको मोह है अपने रिलेटिव्स का। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखी ना ये सारी क्वालिटीज उसकी, तब भगवत गीता का प्राकट्य हुआ ना, तब उनको लगा कि ये सुयोग्य पात्र लगा भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन, कि मुझे अब इन भगवत गीता मुझे सुनानी चाहिए, अब ये राइट टाइम है, ताकि अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता हमारे जीवन में भी आए। हमें फोकस क्या करना है, हमारे अंदर अर्जुन जैसी क्वालिटीज होनी चाहिए फ्रेंड्स, है ना। जैसे जैसे हम अर्जुन के बारे में सुनते जाएंगे तो ये दिव्य जो गुण है, दिव्य गुणों की भंडार है जो, है ना, तो हमारे अंदर भी वो दिव्य गुण होने चाहिए। जितने दिव्य गुण अपने अंदर आते जाएंगे उस हिसाब से हमें भगवद गीता समझ आती है फिर, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ लो ममता जी। हरि बोल, एक ही श्लोक पढ़ेंगे, एक और पढ़ लो बस। हरि बोल।
हरी हरी बोल। श्लोक नंबर 32। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही मुझे राज्य व सुखों की कोई इच्छा है। गोविंद, हम लोगों को राज्य से, भोगों से अथवा जीने से भी क्या लाभ। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना ही मुझे राज्य व सुखों की कोई इच्छा है। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से, भोगों से अथवा जीने से भी क्या लाभ। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। तो इस श्लोक में भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि मेरे मन में विजय, राज्य और सुखों की कोई इच्छा नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं कि मान लो युद्ध में हम जीत भी जाएं, है ना, और वो जीत जाने से हमें राज्य भी मिल जाए, है ना, और राज्य मिलने से हमें कई प्रकार के सुख भी मिलेंगे, लेकिन मैं इनमें से कुछ नहीं चाहता। देखो अर्जुन का भाव, अर्जुन क्या कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आपको पता है कि फ्रेंड्स, धन का ऐसा नशा होता है कि एक भाई अपने भाई के बारे में नहीं सोचता, एक बेटा अपने बाप के बारे में नहीं सोचता, है ना। और यहाँ पे तो एक वैलिड रीजन है ना दुर्योधन के साथ युद्ध करने का, पांडवों का, क्योंकि उन्होंने, पौरवों ने उनका राज्य, अपना राज्य तो उनके पास ही था, तो पांडवों का राज्य भी उन्होंने अपने पास ले लिया था छल से, है ना, उनका हिस्सा भी नहीं उनको दे रहे थे, तो उनके पास तो वैलिड रीजन था, वो गलत थोड़ी कर रहे थे अर्जुन, वो अपने राज्य का हिस्सा मांग रहे थे, कुछ गलत नहीं था इसमें। लेकिन फिर भी उनको लग रहा था कि अगर मेरे को ये राज्य भी मिल जाए, मुझे सुख भी मिल जाए, तो मैं इनका करूंगा क्या, जब मेरे अपने ही नहीं होंगे ये सब देखने के लिए, मेरे अपने स्वजन ही नहीं होंगे, मैं उनको मार कर इन भोगों का क्या करूंगा। देखो उसकी फीलिंग, और एक तरफ दुर्योधन की फीलिंग देख लो, दोनों के भाव में ही अंतर है ना। दुर्योधन को लगता है बस किसी तरह से मैं जीत हासिल कर लूं, किसी तरह से इनको मार लूं और सारा राज्य मैं ले लूं, है ना। पूरे युद्ध में दुर्योधन का यही भाव रहा, कुछ चेंजेस नहीं आई उसमें। और दूसरी तरफ अर्जुन का भाव देखो, है ना। देखो फ्रेंड, जो अर्जुन जैसे लोग होते हैं ना, होते हैं ऐसे लोग भी, वो अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहते फ्रेंड्स। जो वो अपने लिए जो भी कुछ कमाते हैं ना, उनको क्या लगता है कि वो दूसरों में बांट दे, बांटने के लिए वो कमाते हैं। सबकी बात नहीं हो रही है, अर्जुन की बात हो रही है फ्रेंड्स, है ना। उसको क्या लग रहा है कि अगर मैं कुछ जीतता भी, युद्ध में जीतता, तो मैं अपने स्वजनों के लिए जीतूंगा ना, उनको दिखाने के लिए, उनके चरणों में ये सब अपनी जीत डाल देता। लेकिन जब वो ही नहीं रहेंगे तो उनको लग रहा है कि मैं इस राज्य का, इस विजय का, इन सुखों का क्या करूंगा, है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं मुझे राज्य से क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है, है ना। क्योंकि उनको लग रहा है कि जब मेरे मन में किसी भी विजय, राज्य और सुख की इच्छा ही नहीं है, तो मुझे कुछ भी मिल जाए, मेरे मन में इच्छा ही नहीं है अगर मेरे को राज्य की या धन की या सुखों की, तो मुझे कुछ भी मिल जाए उससे मुझे क्या लाभ है, है ना। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं इनका करूंगा क्या, मैं राज्य लेकर क्या करूंगा, धन लेकर क्या करूंगा, विजय लेकर क्या करूंगा, है ना। क्या कह रहे हैं वो, मुझे इस जीवन से भी क्या लेना देना फिर, अगर मैं अपने रिश्तेदारों को ऐसे मार दूंगा युद्ध में, है ना, तो मुझे राज्य तो छोड़ो, मुझे अपने जीवन से भी क्या लेना देना। और युद्ध में क्या होता है, एक योद्धा क्या कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सब कुछ मुझे मिल जाए। जो युद्ध में लड़ते हैं दोनों तरफ के योद्धा, तो वो तो यही कहते हैं ना कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे सारा राज्य मिल जाए, मुझे सुख चाहिए, मुझे विजय चाहिए, है ना, जो भी मतलब उनको चाहिए हो, जो भी लालच होता है उसके लिए उनको मरना भी स्वीकार होता है। लेकिन अर्जुन उल्टा कर रहे हैं, उल्टा कह रहे हैं कि मेरे अंदर सुखों की कोई कामना नहीं है, ऐसे विजय ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए जिसमें मेरे अपने ना हो, मेरे अपने स्वजन ना हो, है ना। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपने रिलेटिव्स को नहीं मारूंगा, वो चाहे तो मुझे मार दे, लेकिन अपने कुटुंबियों को मारकर मेरी जीने की इच्छा नहीं है, अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स को मारकर मेरी तो जीने की भी इच्छा नहीं है, मुझे चाहिए नहीं कुछ भी। तो ये राज्य और ये विजय और ये सुख पाकर मैं क्या करूंगा, है ना। तो अर्जुन कह रहे हैं अपना जीवन बचाने के लिए मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, किसी का जीवन नहीं लूंगा, है ना। क्योंकि उनको क्या लगता था कि ये सब तो मेरे गुरु हैं, मेरे अपने हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे संबंधी हैं, है ना, अगर मैं युद्ध जीतता भी तो मैं सब कुछ इनको अर्पित करता, है ना। इसलिए अर्जुन का ये भाव है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए, ना विजय चाहिए, मैं अपना जीवन बचाने के लिए किसी से बदला नहीं ले सकता, ये भाव था अर्जुन का। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, एवरीवन हरी बोल। तो फ्रेंड्स, आप रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा या आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं तो आप शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। हरी बोल,
हरी हरी बोल,
मैं ईशा
बोल रही हूँ। हरी हरी बोल मोना जी, हरी हरी बोल एवरीवन। बहुत अच्छा लगा मोना जी, आपको कल भी मैंने सुना सत्संग रिव्यू सुने, बेसिकली उस टाइम फोन नहीं था मेरे पास, बाद में रिव्यू सुने मैंने आपके, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप इतने दिनों के बाद आए हो। जैसे उन्होंने कहा था पूजा भाभी ने कि आप एक एनर्जी बूस्टर आपकी आवाज है, वैसे में वैसा ही है। तो आज जैसे आपने सत्संग किया है तो उसमें आपने बताया कि किस तरह से हमें अपने, हमें वो कर्म नहीं करने जिससे हमें अपने लिए या अपनों तक हमारी खुशी सीमित रहे, कि हम अपनों को खुश करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए। हमें वैसे कर्म करने हैं जिसमें प्रभु की खुशी हो। हमें माया जो है वो तो सब पे भारी होती है, लेकिन जब हम भगवान के रास्ते पे चलते हैं तो माया तो हम पे भी भारी है, लेकिन ये जब उस रास्ते पे चलते हैं तो उसमें ये होता है कि सही और गलत की समझ आना शुरू हो जाती है। तो तब हमारा वो निर्णय होता है, फ्री विल भगवान जी ने हमें दी है कि अब चलना किस पे है वो तो हम पे निर्भर करता है, बट एक समझ आ जाती है, एक इनर कॉन्शियस हमारी जाग जाती है कि जो गलत है तो उसको हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपने बताया कि हमें, जैसे अर्जुन हमें एक एग्जाम्पल ये सेट की है कि किस तरह से वो अपनों के साथ युद्ध करते हैं, फिजिकली वो सबको मारना होता है। तो हम लोगों को सच में ये बात सही कही आपने, हमें कुछ कहना भी होता है किसी को, नहीं कह पाते, बिल्कुल नहीं कह पाते, ऐसा लगता है छोड़ या क्यों अगले को मन दुखाना। चाहे कई बार ऐसा सिचुएशन भी होती है, कोई बंदा सामने झूठ बोल रहा होता है या कुछ ऐसा होता है, फिर भी मन ही नहीं करता कि उसको ये कहने का कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सो छोड़ो, क्यों कहना किसी को, क्यों अगले को शर्मिंदा करना, मन में ये चीज आती है क्यों शर्मिंदा करना अगले को, छोड़ो, लेट इट गो, जाने दो ये चीज को, चुप होकर निकल जाओ वहां से। ये मन में हमेशा ये विचार रहता है। बड़ी बार ऐसा होता है कि कई बार पता होता सामने वाले क्या कर रहा है, क्यों बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी छोड़ो, क्यों बोलना किसी को, ऐसा मन में ये चीज रहती है। तो इस तरह से हमें उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें जिस तरह से उन्होंने युद्ध किया धर्म के लिए, हम नहीं कर पाते, हम नहीं कुछ कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे। हम जब प्रभु के रास्ते में जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे, हमारे अंदर जो चीज नहीं है अभी, इतनी शक्ति नहीं है, इतनी निर्भयता नहीं है कि हम उस लेवल पे पहुंचे और इनका हम विरोध कर पाए। इस तरह से हमें अब ये कि इस ट्रैक पे चलते 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 प्रभु से ये, मुझे खासकर मुझे अपने अंदर ये होता है कि मैं किसी को, कि अपने अंदर ये होता है कि मैं नहीं कर पाती। कोई जैसे कोई कुछ कह देता तो आगे से बोलना या कुछ, कई बार होता है, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं कर पाती मैं उसको डील। तो ये चीज मांगनी प्रभु से, अब थोड़ी सी कमी जो है वो भी थोड़ी थोड़ी ऐसा ऐसा कम होती जाए उसको। तो बस आपने बताया कि किस तरह से हमें इस ट्रैक पे चलना है, और प्रभु जिसके साथ प्रभु है उसकी जीत निश्चित है, इसीलिए हमें हमेशा प्रभु के ही रास्ते पर चलना है, उनके बताए गए उनका जो हमें उनका प्यार पाना है, बस बस यही लर्निंग बनी मेरी। हरी हरी बोल, थैंक यू।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच ईशा जी। एज ऑलवेज ब्यूटीफुल लर्निंग्स रहती हैं आपकी, बहुत ही प्यारी लर्निंग्स थी। और सच में जैसे मैं अपना बताऊं तो मुझे बस क्या लगता था कि मेरे हस्बैंड खुश तो मैं खुश, मतलब मेरे बच्चे खुश तो मैं खुश, मेरे पेरेंट्स खुश तो मैं खुश, मतलब अपनी खुशियों का मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पे खुश हूँ, पता ही नहीं कि खुश कैसे होना होता है, खुश है क्या चीज, क्या है ना। तो अब तो ऐसा है कि मतलब बाहर कुछ भी हो रहा हो है ना, कई सर्कमस्टांसेस होते हैं, कई लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं, तो मतलब फर्क पड़ने बंद हो गए, नहीं मैं बोलती बिल्कुल पड़ने बंद हो गया, लेकिन काफी हद तक फर्क पड़ने बंद हो जाता है कि यार ठीक है ना, लाइफ है, बस अपना बेस्ट देना है। फर्क पड़ने कब बंद होता है, जब हम अपना बेस्ट करते हैं, है ना। देखो पहले हम जीते थे अपना मनगढ़ंत जीवन, है ना, हम कहाँ पे खुश हैं, बस उससे रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है ना। अब ऐसा नहीं लगता, अब ऐसा लगता है कि नहीं, जो राइट है बस वो करना है, उसके लिए चाहे घर वाले भी गलत हो, तो कई बार आवाज भी उठानी पड़ती है ना। जैसे मैं अपना ही बोलूं तो घर में मान लो 10 बार बात होगी कुछ, है ना, 10 बार में से 1 बार तो आपको बोलना ही पड़ता है, और बोलना भी चाहिए। मैंने ये ऑब्जर्व किया है और मुझे लगा कि नहीं, हर चीज चुप रह के सॉल्व नहीं होती है। मेरा भी यही नेचर था, छोड़ो यार, छोड़ो, खत्म करो बात को, छोड़ो 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 छोड़ो, बस जहाँ पे बोलना वहां पे बोला नहीं जाता, ऐसा लगता था छोड़ो यार छोड़ो, रिलेशन है कैसे इनको मेंटेन करना, है ना। यही हमेशा रहता है कि चुप रहो, रिलेशन मेंटेन करो, छोड़ो, है ना। लेकिन मैंने भगवद गीता पढ़ के मैं आपको बताऊं, इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है ना कि आपको सही को सही और गलत को गलत बोलना आ जाता है। मैंने तो ये देख, और भगवान भी हमसे यही चाहते हैं, ठीक है, लड़ाई नहीं करनी है, जो सुनना चाहता है उसको अपनी बात रखनी पड़ती है, और कई बार उन चीजों से सॉल्व हुई है प्रॉब्लम्स। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि बोलने से, बात करने से, बात रखने से चीजें सॉल्व हुई है, चुप रहने से बातें गलत हो रही थी, हमें लगता था कि नहीं यार रिलेटिव्स हैं या मेरे बच्चे हैं या मतलब हस्बैंड वाइफ की भी बात है कोई, मान लो, है ना, जितने क्लोज रिलेशन उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें लगता है कि रिश्तेदारों से ऐसी नहीं होता, जितना क्लोज रिलेशन उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है ना। क्योंकि भगवान की ये बात है कि अगर हम सही तरीके से भगवान की बात नहीं मानते तो भगवान फिर हमें सिचुएशन में फंसाते हैं ना। जैसे हम भगवान के राइट ट्रैक पे चलने शुरू होते हैं ना, अपने आप ही रास्ते भी बनने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने तो ये ऑब्जर्व किया, हमारे आसपास का वातावरण इतना मतलब पॉजिटिव होने शुरू हो जाता है ना, कि ये चीजें तो हमें सोच में भी नहीं थी कि मतलब ऐसा भी हो सकता है ना। तो मतलब ब्यूटीफुल रास्ता है, लेकिन बस चलना अपने ही है, इनिशिएटिव हम सब ने ही लेना है। बस एक बार इनिशिएटिव लेंगे और बिना किसी तर्क वितर्क के चलते रहेंगे और जो भी सीख रहे हैं उनको अप्लाई करते रहेंगे तो हमारी लाइफ ही बेटर होती है फ्रेंड्स, है ना। थैंक यू सो मच ईशा जी। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल,
हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मोना दी, आज का सत्संग भी बहुत डिवाइन था। आज आपने जो दो श्लोक करवाए हैं उनसे जो मेरी लर्निंग्स बनी है वो ये है, जब तक हम प्रभु श्री हरि से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हम माया से ही भ्रमित रहेंगे, सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, किसी भी सिचुएशन को कामली हैंडल नहीं कर पाएंगे, कोई सॉलिड डिसीजन नहीं ले पाएंगे। माया की वजह से हम अंधों की ही तरह बिहेव करते हैं क्योंकि हम कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं होते। इन सब रीजंस की वजह से ही हम सब अपनी पूरी लाइफ भ्रमित और परेशान रहते हैं। लेकिन अगर हमें एक अच्छी और स्टेबल लाइफ जीनी है तो हमें प्रभु श्री हरि से कनेक्ट होना है और अपने अंदर के विकारों को दूर करके प्रभु को खुश करना है। हमें वर्ल्डली चीजों से डिटैचमेंट बनानी है और प्रभु श्री हरि से अटैचमेंट बनानी है। हमें खुद के लिए नहीं अपितु औरों के लिए भी जीना सीखना है। हमें अपनी सोच अर्जुन की तरह रखनी चाहिए, जो सबके भले के बारे में सोचते हैं, ना कि दुर्योधन की तरह जो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड ही रहे। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग एज ऑलवेज पूजा जी। और दूसरों के बारे में तो सोचना है वो तो है ही है, वो तो अर्जुन का एक पॉइंट था कि मतलब अपने के रिश्तेदारों के बारे में सोच रहा है वो, मतलब अपने दादाजी, अपने कजन ब्रदर्स, उनके गुरु हैं, उनके बारे में भी सोच रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं अपने बस सुखों के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में। लेकिन जिस दिन हम अपने बारे में सोचने शुरू होना कि मैं खुश कहाँ पे होती हूँ, क्या मैं लोगों को खुश करके खुश हुई कभी, जब हम ये बात दिमाग में आ जाती है ना हमारे, है ना। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को लगता था कि मेरे हस्बैंड खुश तो मैं खुश, मेरे बच्चे खुश तो, मतलब अपनी खुशी का पता ही नहीं है, उसके लिए मन ग्रहण जीवन जी रहे हैं, कुछ पता नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन भगवत गीता पढ़ के आता है क्या, क्लैरिटी आती है माइंड में, स्टेबिलिटी आ जाती है कि मुझे करना क्या है भाई, राइट ट्रैक मिल जाता है। जो भाग रही हूँ मैं बिना मतलब के, भाग क्यों रही है, खुशी के पीछे, है ना। अल्टीमेटली हम सब खुशी होना चाहते हैं ना, सुखी होना चाहते हैं, लेकिन हम खुश कैसे हो रहे थे? चीजों के पीछे भाग कर, लोगों के पीछे भाग कर, कि लोग मेरे को खुश कर लेंगे, चीजें मुझे खुश कर देंगी। जब राइट ट्रैक मिलता है, भगवद गीता के द्वारा हमें जो नॉलेज मिली है ना, उससे क्या हुआ, एक स्टेबिलिटी आ गई। पहले समझ आया कि पहले मुझे अपने आप को खुश करना है, मुझे पता होना चाहिए कि मैं खुश कहाँ पे होती हूँ, कैसे होती हूँ खुश। जब मैं खुश होंगी तो मैं दूसरों को भी खुश कर पाऊंगी, जब मैं ही खुद खुश नहीं होंगी तो मैं दूसरों को कैसे खुश कर पाऊंगी। जब हम पॉजिटिव होंगे तभी हम पॉजिटिविटी बांट पाएंगे, अदरवाइज हम नेगेटिव होते हैं, हम नेगेटिविटी ट्रांसमिट करते हैं दूसरों में, कुछ भी सिखा नहीं पाते बच्चों को भी और किसी को भी। अब खुद खुश है हम लोग तो हम घर का वातावरण ही बदल जाता है, खुद भी खुश रहते हैं और पूरा फैमिली भी खुश रहती है ना। तो पहले इम्पोर्टेंट है खुद खुश रहना, फिर भगवान की बातों पर चलना है ना, जो भी अपने स्क्रिप्चर्स है उसमें जो भगवान ने राइट गाइडेंस दी है उसको सुनना समझना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा अंदर प्योरिटी आती है, वो चीजें जब समझ आती हैं तो अपने आप ही सब कुछ ठीक होने लग जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो ये सब आप लोग भी ऑब्जर्व कर ही रहे होंगे जो दो दो तीन तीन साल से चल रहे हैं, है ना। राइट चीजें करेंगे तो सभी ठीक होगा ना, करनी उल्टी मन घृणन जीवन जीना है ना, अंदर कुछ बाहर कुछ मैच ही नहीं है, अपना हमारी बोली में और हमारे कर्मों में कुछ मैच ही नहीं होता, बोल कुछ रहे हैं, करना कुछ है, अंदर सोचना कुछ है, तीनों में कोई मैच नहीं है। जब इन तीनों में फ्रेंड्स एक जैसी मानता आती है ना, तब जीवन बदलने लगता है। जब सोच भी सेम चीज रहे हैं, बोलना भी सेम है और करना भी सेम, अपने आप ही जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, भगवद गीता सुनते जाएंगे अपने पे वर्क करते जाएंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे चलते जाएंगे, है ना, जो जो बोल रहा है बस वो करते जाएंगे तो अपने आप ही रास्ते खुलते जाते हैं ना। थैंक यू सो मच पूजा जी। हाँ जी, कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल।
हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही दिव्य, और सच में इसमें बहुत डीप लर्निंग थी। मैं एक एक्चुअली मुझे हैबिट है कृष्णा जी की टीचिंग और वो कैप्शंस पढ़ना, तो उसमें एक बार आई वाज गोइंग थ्रू, तो उसमें एक आया था कि अगर आपका कोई भी आपके अगेंस्ट नहीं है या आपका दुश्मन नहीं है तो इसका अर्थ ये होता है कि आप उस समय भी चुप थे जब कहीं अधर्म हो रहा था। तो बहुत अच्छा, ये बिल्कुल उसी के साथ रिलेटेड है कि हम आपके अगर कोई अगेंस्ट नहीं है तो हम क्या करते हैं कि हमारे कोई अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, हमें सभी मीठा बोलने वाले ही पसंद, जो हमारी बड़ाई करें, हमारी वाह वाही करें, हमें हमेशा वही लोग अच्छे लगते हैं। हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, एक्चुअली में चाहते हैं कि हमारे आगे पीछे ऐसे ही लोग हों जो हमारे साथ हमेशा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस दुनिया में हमेशा पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइक द फेसेस ऑफ कॉइन हमेशा रहेंगे। तो हम अगर कभी गलत के अगेंस्ट अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब है कि हम वहां पे भी चुप थे, हम अधर्म का साथ दिया हमने। तो यही वो था। और हम क्या करते हैं, हम बड़े अपने आप की जो हमने लिमिटेशंस हैं, हमने कन्फाइन होके चलते हैं कि ये यहाँ से मुझे खुशी, हम अपना लेके चलते हैं, ये मेरी खुशी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये कभी गलत नहीं है, हम ठीक है चुप करके बैठेंगे, गलत को भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन सच में तब हम अज्ञान होते हैं क्योंकि हमने भगवद गीता, और मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, आई थिंक कि सबकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि हम ये सोचते हैं कि नहीं हमें चुप रहना है, चलो कोई बात नहीं हो गया, क्योंकि हम अज्ञान थे, हमें गीता का ज्ञान नहीं था। लेकिन नाउ हम ये रियलाइज कर पाते हैं कि नहीं, हमें कभी कभी आवाज उठानी चाहिए, अपने लिए नहीं, गलत जो अधर्म है, जो गलत बात हो रही है उसके अगेंस्ट। ये जरूरी नहीं है फैमिली के अंदर, या बाहर ही कहीं देख सकते हैं, कोई जानवरों को मारते हैं हम, ठीक है ना, हमारा कौन सा पेट है या हमारा कौन सा है, हमारा कौन सा है, किसी के साथ गलत करते हैं हम चुपचाप से निकल जाएंगे सामने से, आंखें बंद मूंद के, लेकिन हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम क्या करते हैं, मेरा थोड़ी ना है, मेरे से रिलेटेड क्या है, कोई बात नहीं। तो यही चीज श्री कृष्ण जी अर्जुन, तो वैसे ही जैसे आपने बताया कि वो दुर्योधन के आगे जाके उनका रथ नहीं रोका, सिर्फ भीष्म पितामह और जो थे उनके गुरु उनके सामने जाके रोका। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच थे, और जब उनके साथ उनके सामने उनका रथ रोका गया तो ऑब्वियसली वो जो माया जाल था वो उनके ऊपर हावी हो गया। और ये क्यों उन्होंने किया, इसके लिए, ये भी हम सब के लिए, एक्चुअली जो गीता का ज्ञान है वो अर्जुन के लिए नहीं था, अर्जुन के साथ तो श्री कृष्ण थे, हमेशा थे, ये हम सब के लिए। उन्होंने, उनको पता था कि आने वाले समय में हम जैसे जो हैं अज्ञानी लोग आएंगे, उनको, हम सब के लिए है। तो ये मेरी लर्निंग थी, थैंक यू. हरी हरी बोल.
हरी हरी बोल. हरी हरी बोल. थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी. एज ऑलवेज ब्यूटीफुल लर्निंग्स रहती हैं आपकी. ब्यूटीफुली आपने एक्सपीरियंसेस से आपने बातें शेयर की हमसे. तो बिल्कुल हम यही तो करते हैं. मतलब जहाँ पे गलत हो रहा होता है हम वहाँ पे कभी नहीं बोलते है ना. हम वहाँ पे भी अपना फायदा ही सोच रहे होते हैं क्या ठीक है ना, मुझे क्या फर्क पड़ रहा. और देखो जो चीजें हम गलत कर रहे होते हैं ना, मैंने ऑब्जर्व किया, हम अपने बच्चों को भी वही द्वेष भाव, कंपैरिजन और जेलसी, ये सब चीजें सिखा रहे होते हैं. इधर अपने रिलेटिव्स के बारे में बोल बोल के इतना कान भरते रहते हैं, इसके बारे में बोलना, उसके बारे में बोलना, है ना. खुद भी डिस्टर्ब है, खुद तो पता है नहीं राइट ट्रैक, और बच्चों को भी गलत डायरेक्शन में डाल रहे होते हैं हम लोग, है ना. और फिर बच्चे जब हमें पलट के जवाब देते हैं तो कहाँ से सीखते हैं, है ना. जब वो बड़े हो जाते हैं या अपने पेरेंट्स के साथ वो गलत व्यवहार करते हैं तो वो कहाँ से सीखा होता है उन्होंने ये द्वेष भाव या जेलसी नेचर, है ना, गलत व्यवहार, वो कहाँ से सीखते हैं. ज्यादातर उनकी ट्रेनिंग घर में ही की होती है, फ्रेंड्स, पेरेंट्स ने या आसपास के वातावरण ने, है ना. तो बस मैं तो यही कहती हूँ फ्रेंड, जो मैंने सीखा है कि बच्चों को खुद से ग्रो होने दो. अगर हम सिखा सकते हैं उनको तो एक अच्छी चीजें सिखाओ, है ना, अच्छे संस्कार दो. फालतू का उनके मन में, उनके कान में कचरा मत भरो, है ना, नहीं भरना चाहिए हमें. उनको खुद से सोचने दो ना, वो बहुत कैपेबल है. बहुत छोटा बच्चा, हमें लगता है ना मेरा बेटा ट्वेल्थ में, यार बहुत छोटा है. हम उनको बातें बता बता के फैमिली के बारे में या आसपास के बारे में बता बता के इतना अगेंस्ट कर देते हैं ना, इतना उनके अंदर बीज बो देते हैं ना द्वेष भाव के, कि वो सारी बातें फिर हम पे ही पड़ती हैं बड़े होके. ये बात हम नहीं समझते. नहीं, बच्चे हमें बहुत ऑब्जर्व कर रहे होते हैं फ्रेंड. ये मत सोचो कि बच्चे छोटे हैं, बच्चे देख नहीं रहे हैं. बच्चे सब देख रहे हैं, पूरी वाइब्रेशन हमारी वो कैच कर रहे हैं, है ना. वो हमारा बोलना नहीं सुन रहे, हम क्या कर रहे हैं, क्या बिहेवियर है हमारा, क्या पैटर्न्स है हमारे, हमारे उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनको ग्रैस्प कर रहे हैं. बड़े होके वो वैसे ही बनने वाले हैं, है ना. तो हमें इन सब चीजों से उठना है फ्रेंड्स, है ना. जो ज्ञान हमें मिल रहा है भगवान की कृपा है, बोलती है असीम कृपा है, सौभाग्य है हमारा कि हमें भगवद गीता हमारे जीवन में आई. तो हमें उसको ऐसे नहीं जाने देना है कि बस सुन ली भगवद गीता, हो गया बस ठीक है. खाली सुनने से कुछ नहीं होना, उसको जीवन में उतारने से ही होगा, है ना. कुछ भगवान नहीं खुश होने वाले अगर हमने सुन लिया दो बार तीन बार, तो जब तक कि हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे. इसी में ज्ञान है ना कि उसको अप्लाई करो तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा. उसको पढ़ने से थोड़ी कुछ होगा कि भगवान को सुना दी, भगवान के आगे बैठे रामायण सुना दी, गीता का पाठ कर लिया भगवान के आगे बैठ के भी. भगवान कह रहे हैं कि इसको पढ़ो, इसको अप्लाई करो. थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी. तो ठीक है, फिर हम भजन की तरफ चलते हैं. पूजा जी, आज आपकी भजन की टर्न है, आप भजन गा सकते हो. हरी बोल.
हरी हरी बोल. जय श्री बांके बिहारी लाल की. तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मैं ना, गैरों से क्या मतलब है, पनों से बच के रहना. तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मैं ना, गैरों से क्या मतलब है, पनों से बच के रहना. श्री राम हुए वनवासी, अपनों से धोखा खाया, वो मौसी भी अपनी थी जिसने वनवास दिलाया. सब आनी जानी माया, सुख है तो दुख भी सहना. गैरों से क्या मतलब है, पनों से बच के रहना. तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मैं ना, गैरों से क्या मतलब है, उसे बच के रहना. श्री कृष्ण हुए अवतारी, जाने जन्म जेल में पाया. मामा ही दुश्मन बन गया, था अपना नहीं पराया. बहन को जेल भिजवाया, ना माना किसी का कहना. गैरों से क्या मतलब है, अपनों बच के रहना. तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मैं ना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना. रावण विद्वान हुआ था, अपनों से धोखा खाया. वो भाई भी अपना था, जाने सारा भेद बताया. प्रहलाद ने धोखा खाया, पड़ गया अग्नि में दहना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। तेरा झूठा मोह जगत में, तोते से बोली मैं ना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। जो अपनों से दगा करेगा वो सात जन्म भोगेगा, तू तो किस पे करे भरोसा, चल उड़ जा हंस अकेला। दुनिया का झूठा मेला, संतों का यही है कहना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। तेरा झूठा मोह जगत में, तोते से बोली मैं ना, गैरों से क्या मतलब है, अपनों से बच के रहना। हरी हरी बोल।
थैंक यू सो मच पूजा जी, ब्यूटीफुल भजन गाया आपने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम
राम राम
हरे हरे। बोल
बोल
मंदिर, हर मन मंदिर,
हर मन मंदिर,
राधे कृष्ण।